الحمد لله. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج की इस मजलिस से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पिछला टॉपिक तो मशायख के बताया हुआ इस्लाह का नुस्खा था, जो तमाम मशायख के नज़दीक मोतबर भी और तमाम मशायख उसको इस्तेमाल भी फरमाते थे। आज से उन लोगों का तذکرہ करना है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन लोग हैं। तो हदीस पाक में ऐसे लोगों का तذکرہ आया कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुसलमान है। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी हाथ से और जुबान से दूसरे महफूज रहे। तो मुसलमान का भी तذکرہ आया कि मुसलमान कौन है। इसी तरह ईमान वाले का भी तذکرہ आया कि मोमिन जो है वो मुस्लिम से, यानी इस मुसलमान से ऊंचा दर्जा मोमिन का है। तो उसके बारे में भी बहुत सारा तذکرہ हदीस पाक में आए कि मोमिन कौन है। मोमिन हया वाला होता है, मोमिन जो है वो नमाज को बड़ी तवज्जो से पढ़ता है। तो मुसलमान का भी तذکرہ कुरान और हदीस में आया, मोमिन का तذکرہ भी कुरान और हदीस में आया। इसी तरह सबसे बेहतरीन मुसलमान का तذکرہ भी हदीस पाक में आया कि कौन सबसे बेहतरीन। चनाचे हदीस पाक में तकरीबन 7-8 लोग ऐसे मुख्तलिफ औकात पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुम में सबसे बेहतरीन लोग। तो अगले चंद दिन इन बेहतरीन लोगों का तذکرہ होगा। हम में से हर एक ये चाहता है कि मैं किसी न किसी तरह अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाऊं। तो ये एक अच्छा जरिया है कि ऐसे 7-8 चीजें अल्लाह के नबी ने फरमा दी कि जो ये काम करेगा वो बेहतरीन हो जाएगा। और सच्ची बात यह है कि ये 7-8 करने जरूरी नहीं, अगर गौर करें तो जो एक इन 7-8 में से कोई एक चीज को भी पकड़ लेंगे। तो हदीस पाक के अल्फाज इसी तरह से हैं कि इंसान बेहतरीन शख्स बन जाए। चनाचे एक आदमी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन शख्स है, ये वो जिसको लंबी उम्र मिले और वो अपनी लंबी उम्र इबादत में सर्फ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम से पूछा कि बताओ लोगों में बेहतरीन कौन। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं कि लोगों में बेहतरीन कौन है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मन ताला उमरिही व हसना अमलिही, कि जिसकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो और उस लंबी उम्र में वो नेक आमाल करता रहा, इबादत करता रहा। तो जिसने इबादत ज्यादा की वो भी बेहतरीन शख्स, यानी सिर्फ आम मुसलमान नहीं, आम मोमिन नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ऊंचे दर्जे का हो जाए कि जिसको उम्र ज्यादा मिली और वो ज्यादा उम्र का जो हिस्सा तो था वो उसने इबादत में गुजार दी। सच्ची बात यह है कि इबादत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा पसंद है। हमें पैदा भी अल्लाह ने इसीलिए किया कि हम अल्लाह की इबादत करें। इतना पसंद अल्लाह को ये इबादत करना कि अपने प्यारे महबूब को कुरान में हुक्म फरमा दिया कि आप भी अपने आप को उनके साथ नत्थी रखें, जोड़ के रखें, जो सुबह शाम हमारी इबादत करते। चुनांचे कुरान पाक में अपने महबूब को हुक्म दिया, वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीन यदउना रब्बहुम, क्या महबूब आप भी अपने आप को जोड़ के रखें उनके साथ जो हमें पुकारते हैं सुबह में और शाम। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये मुबारक आयत नाजिल हुई तो मैं अपने हुजरे में था। जैसे ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह का हुक्म आया कि आप अपने आप को उनके साथ जोड़े रखें जो दिन रात हमें पुकारते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं मस्जिद में हाजिर आ गया और मस्जिद में असहाबे सुफा सुबह शाम इबादत में मशगूल होते। आप फरमाते हैं कि मैं उनके दरमियान जाके बैठ गया। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि कभी कभी नबी अलैहिस्सलाम हमें मुखातिब होके फरमाते कि पाक है वो जात जिसने मुझे तुम्हारे साथ बैठने का हुक्म दिया। कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने आप को इबादत वालों के साथ रखें। तो बेहतरीन लोगों में पहला शख्स वो कि जिसको उम्र लंबी मिली और उसने वो लंबी उम्र जो है वो इबादत में सर्फ कर दी। इतना ज्यादा दुनिया का गर्द हमारे दिलों पे छा गया है कि इबादत की वैल्यू दिल से खत्म हो गई। और कोई शख्स बहुत ज्यादा इबादत करता है और उसके पास अगर थोड़ी दुनिया है तो कई मर्तबा दीन वाले लोग भी उसको बहुत ही यूं समझ ले कमतर नजर से देखते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कामयाब हो गया वो शख्स, कामयाब हो गया वो शख्स जो मुसलमान हो गया, उसके पास रिस्क बराबर सराबर था, बस जो थोड़ी बहुत जरूरत का था उतना था और उस पर उसने कनात कर ली कि थोड़े रिस्क पे गुजारा कर लिया, मकसद इस रिस्क को नहीं बनाया, तवज्जो इबादत की तरफ थी। तो इतना ज्यादा ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों पे गालिब हो गई है कि अगर कोई शख्स सिर्फ इबादत करने वाला है या जिसने अपनी तबीयत को अल्लाह की तरफ लगा दिया तो हम उसे बहुत ही नाराजगी की नजरों से देखते हैं। मगर ये इबादत करने वाले वो लोग कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हुक्म दिया कि जो सुबह शाम इबादत में मशगूल है आप उनके दरमियान जाके बैठ जाएं। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे असहाबे सुफा में से, पूरा दिन इबादत में मशगूल। असहाबे सुफा जो है वो अल्लाह के नबी का पहला मदरसा, तो उसके रहने वाले इबादत करते थे और अल्लाह के नबी से दीन सीखते थे। तो उनमें से एक सहाबी जो थे उनका भाई एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आके शिकायत की कि अल्लाह के नबी ये मेरा भाई है, ये पूरा दिन यहाँ होता है, इबादत करता रहता है, काम तो कोई करता नहीं है और मैं पूरा दिन काम करता हूं, तो हम दो हैं, कमाता मैं एक ही हूं और फिर मैं अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी पालता हूं और इसको भी पालता हूं। तो उसने एक तरह से शिकायत की। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी शिकायत सुन के फरमाया कि मुमकिन है कि इसकी बरकत से तुझे रिज्क मिल रहा हो। तो सच्ची बात यह है कि जिसने इबादत ज्यादा कर ली, उसने बरकतों को समेट लिया, उसने असल मकसद को हासिल कर लिया। तो जिसने इबादत ज्यादा की उसी को अकलमंद कहा जाएगा, और जिसने इबादत को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, बड़ा अपने आप को अकलमंद समझा कि जी मैंने तो ये बिजनेस भी कर लिया, फलां बिजनेस फेल हुआ तो मैंने फिर वो दूसरा भी कर लिया, मैं अपने आप को मसरूफ रखता हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा मस्जिदों वाला नहीं हूँ। कई मरतबा इंसान ऐसे समझता है कि जी बड़ी मैंने अकलमंदी की। अकलमंद वही निकलेगा जो इबादत करेगा, जिसकी इबादत कम रह गई उसने रोना है, और इतना ज्यादा अफसोस इस इबादत के कम होने का इंसान को होगा कि हदीस पाक में आता है, ला यतहसरु अहलल जन्ना, जन्नत में जाके तो कोई हसरत नहीं है, जो जन्नत में पहुंच गया वो तो कामयाब है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जन्नत में तो कोई हसरत नहीं है, बस एक चीज की हसरत फिर भी रह जाएगी। इंसान कहेगा कि जो वक्त मेरा दुनिया में जाया हो गया, जो इबादत में लग सकता था, उस पे जन्नत में भी जाके हसरत होगी कि काश वो वाला वक्त इबादत में लगा। तो अभी तो कई मरतबा इबादत नहीं करते और खूब दुनिया कमा रहे हैं, तो इंसान समझता है मैं बड़ा अकलमंद, पर ये बेचारा इबादत में ज्यादा लगा हुआ है, ये बेचारा बड़ा बेवकूफ। और कल कयामत के दिन अपनी बेवकूफी का एहसास होगा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसको उम्र भी ज्यादा मिले और जिसने वो उम्र इबादत में गुजार दी, जिसने हमारे अकाबरीन ने इबादत ही पर वजन रखा। अल्लाह ने उनको दुनिया भी बड़ी दी थी, अल्लाह ने उनको मसरूफियत भी बड़ी दी थी, मगर उस सब के दरमियान इबादत ही को वक्त दिया कि ये असल काम है, इसके लिए मैं दुनिया में आया हूँ। हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आपका मामूल था कि रमजान मुबारक में पूरी रात कुरान पाक नवाफिल में सुनना, तरावी खत्म होती आपके अपने घर के सहन में, आपके ही तालिबे तुलबा में से कोई ना कोई कारी साहब होते जो सुनाते, पूरी रात खड़े हो जाते। या आपका मामूल पूरी जिंदगी रहा बुढ़ापे, और फिर बहुत ज्यादा जब जयीफी और बुढ़ापे का जमाना आया तब भी यही मामूल। तो जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, उम्र ज्यादा हो गई, तो कई मर्तबा ये रात भर जागने की वजह से दिन में गुलूदगी और बीमारी नकाहत नजर आती। घर के लोगों को भी महसूस होता कि ये पूरी रात जो जाग रहे हैं, उम्र अब ऐसी हो गई है ना कि कुछ आराम रात को कर ले। मगर घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस मामूल से उनको रोक सके। इतना हजरत का इस इबादत के मामले में सख्त मौकिफ था। तो एक मरतबा जब बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र थी और रात की इबादत की वजह से दिल में नकाहत हर एक पे जाहिर थी, तो हजरत की फैमिली में से दो तीन लोगों ने, कारी साहब जो पढ़ाते थे रात भर, जो कुरान पाक की इमामत करते थे और हजरत पीछे खड़े होते थे, उन कारी साहब से गुजारिश की कि देखें आपके भी उस्ताद हैं, हमारे वालिद हैं, और पूरी रात ये जो खड़े रहते हैं नवाफिल में, इसकी वजह से बीमार जाहिरन नजर आती है, चेहरे पे नजर आ रही है, थक भी जाते हैं, बीमार भी ज्यादा है, दवाइयां फिर लेनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कारी साहब से कहा कि आप कोई बहाना कर दें कि जी मेरी तबीयत अभी बहुत थकी हुई है या मैं थोड़ा बीमार हूं, तो उससे मौकूफ हो जाएगा ये रात भर इबादत में खड़ा रहना, तो हजरत भी कुछ आराम कर लेंगे। और कारी साहब से उन्होंने कहा कि आप भी एक दो दिन आराम कर लें, पूरी पूरी रात जागना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कारी साहब ने कहा बहुत अच्छा, मुझे भी बिल्कुल फिक्र है हजरत की सेहत की, मुझे भी नजर आ रहा है कि सेहत गिरी हुई है। तो अगले दिन तरावी के बाद जब घर पहुंचे तो कारी साहब ने उस वक्त अब्जर कर दिया कि हजरत आज तबीयत बहुत थकी हुई है, दिल नहीं चाह रहा कि रात भर खड़ा रहूं तिलावत करते हुए, तो आज माजरत कर दे। हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा, आपकी तबीयत अगर सही नहीं है तो आपको आराम करना चाहिए, और हाथ पकड़ के और लेटा दिया अपने ही बिस्तर पे कि यहां लेट जाए। अब वो अदब की वजह से लेट तो गए मगर परेशान हो गए कि मैं तो चाह रहा था कि हजरत कुछ लेटते और आराम करते और हजरत ने अपने बिस्तर पे मुझे ही लिटा दिया है। कहते काफी देर में बस लेटा रहा, आंख बंद भी करता रहा, सोच रहा था कि यहां से निकलने की कोई तरतीब हो ताकि हजरत भी आराम करे और मैं भी जाके थोड़ा सा रेस्ट करूं। फरमाते ये सोच ही रहा था कि मुझे फील हुआ कि कोई मेरे पैर दबा रहा है। अल्लाह, कहते आंख खोल के देखा तो हजरत बूढ़ा, इस इतनी बुढ़ापे वाली उम्र में मेरे पैर दबा रहे हैं। कारी साहब कहते मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा हजरत ये क्या आप फरमा रहे हैं? तो हजरत की तरफ से जवाब आया कि रमजान की रातें हैं, ये तो इबादत की रातें हैं, नवाफिल पढ़ने वाली इबादत का अगर मौका नहीं मिल रहा तो सोचा कि बीमार की खिदमत करने वाली इबादत कर लूं। कारी साहब ने कहा हजरत मुझे माफ करें, आप मुसल्ले पे आए, मैं आपको कुरान ही सुना देता हूं। तुम्हारे अकाबरीन ने इबादत को यूं वैल्यू दी कि अकलमंद शख्स वही है जिसने दिन और रात में अल्लाह को याद किया और जिसकी जिंदगी गुजर गई और उसने इबादत को थोड़ा वक्त दिया, उसको हसरत ही हसरत होनी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बेहतरीन लोगों का तذکرہ फरमाया उसमें से एक वो मन तआला उमर उमरी ही, कि जिसकी उम्र बहुत बड़ी वह हसन अमली, और उसने वो उसमें नेक आमाल इबादत के आमाल कर ली। अल्लाह ताला हमें भी खूब इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام ورحمة الله
ورحمة
وبركاته.
الله.